कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। तो वृंदावन के विषय में हम बहुत सारी चर्चा करते 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 आ रहे हैं और लगता है कि इसके टॉपिक्स जो है वो अनंत हैं वृंदावन के विषय के। तो एक और जैसे हमने शुरुआत से ही बताया कि वृंदावन में बहुत कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें एक है स्वयं वृंदावन, उसके बाद है यमुना, उसके बाद है गोवर्धन, फिर उसके बाद है गाय, फिर ब्रजरज और फिर वृंदावन का भाव, सखी भाव, माधुर्य भाव और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन उसमें से एक है बंसी भगवान की जो वृंदावन में ही रहती है। और हमारे भारत में जो आते हैं ना सीरियल्स टीवी पे, उसमें द्वारका में भी भगवान के हाथ में मुरली और मोरपंख दिखाते हैं, वो सब सही नहीं है। भगवान की मुरली और मोरपंख कभी ब्रज के बाहर नहीं गया। हमारो मुरली वालो श्याम, बिन मुरली बन मार चंद्रिका, बिनते काऊ काम, हमारो मुरली वालो श्याम। तो और एक वस्तु है वो मोरपंख, मोर और मोरपंख, ये भी श्री वृंदावन की विशेषता है। तो आज हम इस बंसी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बंसी बांस की बनती है, सबको पता है ना, बैम्बू से बनता है। बैम्बू, बैम्बू कहाँ आता है? नदी किनारे जंगल में बैम्बू आता है, हमारे जी में भी बैम्बू बहुत रहता है और इसी का उसी बांस से बांसुरी बनती है। तो भगवान की बांसुरी जो है वो प्रमुख प्रकार से तीन टाइप की होती है, थ्री मेन क्लासिफिकेशंस। हाँ, एक है वेणु जो सबसे छोटी होती है, वो 6 इंच की होती है और उसके अंदर 5 होल होते हैं। ये होल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होल जितने होते हैं और जितनी लंबाई होती है उसके प्रकार से स्वर निकलता है। ऐसे कहते हैं कि जब भगवान ने रात को बीच शरद पूर्णिमा का दिन बंसी बजाई थी रात को, तो वेणु बजाई थी 6 इंच वाली। उसके बाद में जो है वो बड़ी है बंसी, बंसी कहते उसको। वो बंसी जो है वो 15 इंच की है, यानी 2.25 फुट की है, राइट, बराबर ना, नहीं 1.25 फुट की है, 1.25 फुट। और उसके अंदर 9 होल होते हैं, 9 छिद्र होते हैं। और उसके बाद में सबसे लंबी होती है, उसको मुरली कहते हैं। और मुरली जो है वो 18 इंच की होती है, यानी 1.5 फुट की होती है। और उसके अंदर एंड में 4 छिद्र होते हैं, बाकी में पूरे शरीर में होते हैं, इसमें लास्ट में होते हैं। तो रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन करते हैं कि जब ये भगवान की बंसी जो है वो कृष्णा के दांतों को टच करती है तो लगता है कि वो स्फटिक मणि जैसा है, ऐसा दर्शन हो रहा है। जब ये मुरली कृष्ण के हाथ के जो तलवे हैं ना, ये हाथ के तलवे वो लाल रंग के होते हैं, पैर के तलवे लाल रंग के होते हैं, तो वो रूबी स्टिक जैसे दिखती है। रूबी स्टिक यानी रूबी को क्या कहते हैं हिंदी में? रूबी इज पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। लाल रंग का जो मणि होता है ना उसको रूबी कहते हैं। और जब कृष्ण के नीले गालों को वो स्पर्श करते हैं, जैसे अभी मुरली ऐसे पकड़ी हुई ना ऐसे, तो वो होठों को भी स्पर्श कर रही है, कभी दांतों को भी स्पर्श करती है, हाथ को भी स्पर्श कर रही है दोनों तरफ से, और गाल को भी स्पर्श कर रही है ऐसे, तो वो सैफायर एंड नील मणि की तरह नजर आती है। और ये तीन अलग अलग प्रकार के जो रत्न हैं वो विशाखा देवी कहती है, जो राधा रानी की सखी है, वो कहती है तीन प्रकार के जो अलग अलग रत्न हैं ये कृष्ण की शोभा बढ़ाते हैं मुरली के होते हुए। अब ये मुरली जो है ये अलग अलग टाइप की है, यानी वेणु, मुरली, बंसी, हमको लगता है कि सब सेम है, सब सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसके आठ स्वर निकलते हैं, तो ये आठों स्वर जो है वो बहुत विशिष्ट हैं। ऐसा नहीं कि केवल आठ ही निकलते हैं, लेकिन आठ प्रधान स्वर हैं और उन स्वरों का कॉम्बिनेशन भी होता है और उसमें से बड़ी संगीत सभा प्रस्थापित हो जाती है। हाँ, म्यूजिकल कंसर्ट ऐसा कहते हैं कि वृंदावन में बाकी सारे वाद्य भी हैं, ऐसा नहीं है, वीणा है और सितार है और बाकी सारे बहुत सारे वाद्य हैं, लेकिन प्रमुख वाद्य क्या है किसी को पता है? आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाँ, तो प्रमुख टॉपिक, प्रमुख जो वाद्य है वो मुरली है, दूसरा है सबके हाथ में जो कंगन पहनते हैं वो वैसे ऐसे बजाते हैं उसको, धीरे धीरे, जोर से बजाए टूट जाएगा ना, तो धीरे धीरे बजाते हैं। तो शुरुआत मुरली से होती है, फिर उसके बाद में ये कंगन से म्यूज़िक शुरू होती है, फिर उसके बाद में पायल जो है वो भी दोनों पैरों को लगाकर संगीत शुरू होता है। ये तीन कृष्ण और राधा रानी जब मिलते हैं तो प्रधान संगीत जो है वो तीन वस्तुओं से होता है। तो उसके बाद में मृदंग है, उसके बाद में करताल भी है, उसके बाद में पखवाज है, उसके बाद में सितार है, वीणा है, वो सब कुछ बजाते लोग। तो प्रथम जो स्वर है जो वेणु से निकलता है उससे क्या होता है, ये आठ जो स्वर निकलते हैं उसके आठ परिणाम भी बताए गए हैं। तो ब्रह्मा, शिव आदि जो देवता हैं उनका ध्यान भंग हो जाता है, क्योंकि सब लोग ध्यान में बैठे ना, जब मुरली बजते तो उनका ध्यान भंग हो जाता है। और जब ये प्रथम स्वर उनके कान के छिद्रों में प्रवेश करता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं कि वो कौन है, उनका ड्यूटी क्या है, उनका पोजीशन क्या है। शिव जी अपना डमरू बजाना बंद कर देते हैं और ब्रह्मा जहाँ पर बैठे हैं पद्मासन में वहाँ पर बहुत अचंभित, आश्चर्यचकित अवस्था में चले जाते हैं। और अनंत शेष, जैसे वो होता है ना सम्मोहन, पता है आपको, हिप्नोटिज्म, ऐसे हिप्नोटाइज्ड हो गए, ऐसे ऐसे डोलते हैं अनंत शेष, वो जो फन है ना, ऐसा फन वैसे ऐसे ऐसे डोलता है। ये हो गया पहले स्वर का परिणाम। दूसरे स्वर का परिणाम है यमुना जी एक तो रुक जाती है नंबर वन, फिर गोल गोल घूमती है और फिर उल्टी जाती है। क्या क्या बताया मैंने बताइए, एक तो वो जा रही है तो रुक जाती है मुरली के स्वर से, फिर क्या होता है वो भवरा बनाती है अपने आप ही और बाद में वो उल्टा जाने लगती है। तीसरा जो स्वर है उससे चंद्रमा और सूर्य जो आकाश में अपनी कक्षा में घूम रहे हैं वो रुक जाते हैं और उल्टा चलने लगते हैं, भूल जाते हैं कि हमको कहाँ जाना है। चौथा जो स्वर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वर है, इससे इससे जो गाय है ना, गाय कृष्ण की गाय है ना, बहुत कृष्ण को बड़ी प्रिय हैं, वो मुरली बजाते हैं तो मुरली का एक उपयोग इसके लिए भी है कि वो गाय को अपना सिग्नल देते हैं, आ जाओ, रुक जाओ, चले जाओ, एकत्र हो जाओ, ऐसे बहुत प्रकार के सिग्नल देते हैं। तो चौथे धुन से, चौथे स्वर से वो गाय को बुलाते हैं, गाय के लिए समर्पित है ये। और गाय जब है वो जब धुन बजती है तो एक विशिष्ट बात है, हर गाय को अपना नाम सुनाई पड़ता है उसके अंदर, हर गाय को उसका नाम सुनाई पड़ता है, लगता है कि वो मुरली से केवल उसको ही बुला रहे हैं। और कृष्ण की करोड़ों गायें हैं वो सभी गायों को उनका उनका नाम सुनाई पड़ता है जब एक धुन बजती है। फिर गाय क्या करते हैं, भाग के कृष्ण के पास आती है और कृष्ण के साथ एकदम स्तब्ध होकर खड़े हो जाती है, ऐसा संभव विकार कहते हैं उसको, उनके कान ऐसे ऊपर होते हैं एकदम ध्यान से वो मुरली का ध्वन सुन रहे हैं, पूंछ भी ऊपर होती है, आंखें भी ऊपर होती है और एक जगह पर ऐसे स्थिर होकर भगवान की मुरली की आवाज़ सुनते हैं। और मुरली के स्वर से निकलने वाले अमृत को पान करते रहते हैं। पांचवा स्वर जो है मुरली का, उसका काम क्या है सबको पता है ना? हाँ क्या आपने क्या बोला? हाँ पंचम स्वर से क्या होता है? गोपियों को बुलाते हैं। ये पंचम स्वर जो है वो सभी गोपियों के लिए है। इसका भी विशेषता यह है कि जब ये कहीं भी बजती, समझो अभी 50 किलोमीटर दूर वृंदावन में बंसीवट पे भगवान मुरली बजा रहे हैं फिफ्थ नोट, और सब गोपियाँ नंदगांव बरसाना वृंदावन गोवर्धन सब जगह रहती है ना, उतनी दूर तक सबको सुनाई पड़ती है, और वो जब बजती है तो केवल गोपियों को ही सुनाई पड़ता है और किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। गाय को सुनाई नहीं पड़ेगा, ग्वाल वालों को सुनाई नहीं पड़ेगा। इट्स लाइक अ वेरी कस्टमाइज्ड एक्टिविटी है ना। हमने अभी बुलाया किसी को हरे कृष्णा तो सब लोग देखेंगे मुड़कर, पता नहीं किसको बुला रहा हूँ मैं, लेकिन सब लोग मुड़ के देखेंगे। हरी बोल तो सब लोग देखेंगे, हमारा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। लेकिन भगवान जब मुरली बजाते हैं तो स्पेसिफिकली किसको बुलाना है उसी को सुनाई पड़ता है। तो क्या होता है अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा एग्जैक्टली जब गोपियाँ मुरली सुनती है तो क्या होता है। छठवां नोट जो है सिक्स्थ नोट स्वर, उससे जो शरद ऋतु है वो अपने बहुत ही सघन पत्तों से फूलों से फलों से एकदम भर जाता है। और दो काम होते हैं इसके अंदर छठे नोट से। एक होता है शरद ऋतु आ जाता है, अभी शरद ऋतु आने का समय है ना, अभी शरद ऋतु चल रहा है दो महीने के लिए, लेकिन जनवरी में बजाएंगे तो भी शरद ऋतु आ जाएगा। छठवां नोट बजाएंगे जनवरी में, मतलब छठवां नोट जिस भी समय बजाएंगे वो शरद ऋतु वहाँ पर आ जाएंगे, अपने सारे जितना ऐश्वर्य है सौंदर्य है उस सबको लेकर आएंगे। और छठवे स्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है वो ये है कि जब छठवां नोट बजाते हैं भगवान, तो अगर पत्थर पे खड़े हैं या तो पत्थर पे खड़े नहीं हैं, दोनों तरफ से पत्थर पिघलने आरंभ होता है। आप लोगों ने किसी ने साइंस सीखा होगा तो हम सब कुछ पिघला सकते हैं, सोना पिघला सकते हैं, लोहा पिघला सकते हैं, लिक्विड लोहा बना सकते हैं है ना, लिक्विड आयरन, लिक्विड गोल्ड बना सकते हैं हम लोग 3000 टेम्परेचर सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, एक्चुअली पानी की तरह लोहे को भा सकते हैं यहाँ से इस पात्र से उस पात्र में, फिर उससे अलग अलग कोई तलवार बनाते हैं, कोई और कुछ बनाते हैं, कोई शार्प आइटम बनाते हैं बहुत सारे। लेकिन आज तक साइंस में पत्थर पिघलाने का कोई तरीका ढूंढा नहीं है। पत्थर को आप सुरंग से तोड़ सकते हैं, बॉम्ब डाल के उसको तोड़ सकते हैं, फिर हथौड़ी से पाउडर करके उसका टुकड़ा बना सकते हैं, तो क्रशर में उसको क्रश कर सकते हैं, लेकिन पिघला नहीं सकते इसको, कोई भी प्रक्रिया नहीं है। यू कैनॉट मेल्ट द स्टोन। बट भगवान के छठी मुरली के स्वर से पत्थर पिघल जाते हैं, द स्टोन्स मेल्ट। तो ये छठे नोट का दो परिणाम है, एक शशिर एक शरद ऋतु और एक पत्थर पिघलना। अभी सातवां नोट जो है सातवां स्वर भगवान का मुरली का, उससे क्या होता है, अभी छठवें नोट से केवल शरद ऋतु आता है, सातवां नोट बजाएंगे तो साल में कितने ऋतु होते हैं बताइए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छह ऋतु होते हैं। हाँ हर ऋतु दो महीने का होता है, इस तरह से 12 महीने बन जाते हैं। तो सातवां नोट बजाने के बाद में ये सारे ऋतु आ जाते हैं विद बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी, अपना अपना सर्वोत्तम सौंदर्य लेकर सारे ऋतु आ जाते हैं। तो एक साथ गर्मी भी है, एक साथ में वर्षा भी हो रही है, एक साथ में फूल भी खिल रहे हैं, एक साथ में आम भी खिल रहे हैं, हाँ संतरी भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। ऐसे कब हुआ था पता है आपको? जब कृष्ण का जन्म हुआ था ना तो सारे ऋतु एकत्र हुए थे वहाँ पर अपना अपना बेस्ट योगदान देने के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट योगदान और बेस्ट सेवा भगवान को देने के लिए, भगवान के स्वागत के लिए सारे छः ऋतु वहाँ प्रकट हुए थे। तो इंस्टेंटली सातों ऋतु वहाँ पर आ जाते हैं, अपना अपना पूरा गौरव और अपना सौंदर्य प्रकट करते हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर मुलायम सुगंधी हवा होती है, जो जंगल में जो फूल खिले हैं या जमुना जी में जो फूल खिले हैं या कहाँ भी फूल खिले हैं, वो हवा वहाँ से उनके सुगंध को लेकर बहुत सुंदर मृदु मृदु तरीके से कृष्ण और राधा रानी को आनंद देने के लिए आते हैं। और लास्ट नोट है आठवां। आप लोग बताइए आठवां नोट का क्या काम है? राधा रानी के लिए एक पूरा स्वर डेडिकेटेड है। जब वो बजाते हैं तो केवल राधा रानी सुनती है और कोई नहीं सुनते, किसी को सुना नहीं पड़ेगा, ओनली राधा रानी विल हियर। तो इस तरह से आठवें सर जब बजता है तो मुरली से केवल राधा 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 सुनाई पड़ता है। राधा रानी अपना पूरा नियंत्रण खो बैठती है और पागलों की तरह जहाँ पर भी बैठी है वहाँ से भाग जाती है उस स्वर की ओर। ठीक है, अभी आठवें स्वर के बारे में विशेष लिखा है कि आठवां स्वर बजने पर राधा रानी बिल्कुल भाव विभोर हो जाती है और अपने आँखों का जो काजल है वो पैर को लगाती है, कुमकुम जो है वो आँखों में लगाती है, गले की माला जो है वो कमर में पहनती है और पैर की जो पंजनियाँ हैं वो हाथों में पहनती है और ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर पहनती है। ये राधा रानी के ऊपर परिणाम बताया है। अभी मैं आपको एक एक कहानी बताऊंगा। ये जो पहला स्वर है, दूसरा स्वर है, ये तो रूटीन है, वो सभी देवताओं को भ्रमित कर देता है। तो ये जो चौथा नोट है, इसका उपयोग भगवान जब हर रोज गाय चराने जाते हैं ना, तो भगवान के गाय चराने में दो तरीके हैं। एक, भगवान बछड़ों को चराते हैं जिसको कहते हैं वत्सपाल, वत्सपाल लीला, वत्स यानी बालक, बछड़ा और बछड़ी, बछिया और बछड़ा। तो इनको भगवान को एक साल के उम्र में दिया था। भगवान जब भी गोकुल में थे तो रोज कृष्ण बलराम अपने बाबा के हाथ में उठाए हुए जाते थे गौचारण करने के लिए। तो जब भी उन्होंने देखा गौचारण करते हुए तो उन्होंने बाबा से बहुत जिद किया कि हमको भी बछड़े चाहिए, हमको भी गौचारण करना है। तो उनको बहुत डर था कि बछड़े कैसे होते हैं, हम भागते हैं किधर भी। तो ये नन्हे नन्हे बालकों को धक्का लग गया कि पैरों के नीचे आ गए, कहीं धक्का लग के जमुना में गिर गए, तो वो नहीं देते थे। लेकिन उन्होंने एक साल के बाद में बहुत जिद की, घर पर आके बहुत बहुत ज़्यादा जिद की। तो यशोदा और नंद बाबा ने मीटिंग की और सोचा कि ठीक है, छोटे छोटे बछड़े जो हैं एकदम कोमल कोमल से, ज़्यादा भागते नहीं हैं, उनकी देखभाल इनको देंगे। इनको क्या है, हाथ में पकड़ा पकड़ के चलना है ना, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, अभी हम बड़े हो गए, हमें कितना दिन हाथ में चलेंगे, हमको नीचे उतार दो, हमको चलना है और चल के हमको वो गौओं को चलाना है। तो फिर बड़े गोपों की निगरानी में वो छोटे छोटे बछिया और बछड़े जो हैं उनको दिए गए और वो हाथ में डंडा भी दिया गया और वो भागने लगे सुपरविजन के अंडर। तो सब लोगों को सख्त वहाँ पर इंस्ट्रक्शन था कि देखो किसी भी समय कृष्ण के ऊपर से नज़र हटनी नहीं चाहिए, कॉन्स्टेंटली आपको कृष्ण को देखना है, क्योंकि ये बहुत नटखट है, कभी भागेगा कभी कुछ करेगा और खुद जमुना में कूद जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो उसके बाद में जब 5 साल हुए भगवान के उम्र के, तो उनको बड़ी गायों का जिम्मेदारी दिया गया। अब इसका कैसा है, इसमें बहुत बड़ी लंबी लंबी लीलाएं हैं। वो ऐसी लीला है कि भगवान ने 1 साल की उम्र में बछड़ों को चलाना शुरू किया और फिर चलाते गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब बछड़े भी बड़े हो रहे हैं और कृष्ण भी बड़े हो रहे हैं, है ना। और कैसा है, वृंदावन धाम में सभी जीव जो हैं वो हमारे जैसी बात करते हैं, मनुष्य जैसी वाणी में है, तो वो अपने अपने मोर है, सब है, जब चाहे तभी मोर की आवाज़ निकालेंगे, जब चाहे तभी बात भी कर सकते हैं। तो ये छोटे बछड़े जो हैं अपनी अम्माओं को, मतलब गायों को जाकर बता रहे हैं कितना आनंद आ रहा है कृष्ण बलराम के साथ, कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, आज ये किया, आज वो किया, ऐसे भागे, ऐसे कूदे। तो बच्चों की कहानी से गायें भी प्रेरित हो गई और गाय के साथ बैल भी प्रेरित हो गए जो उनके पिताजी हैं सब लोग के, है ना। अभी रोज बच्चे बता रहे हैं कृष्ण के साथ में इतना आनंद आ रहा है। तो क्या हुआ, कुछ देर बाद क्या हुआ कि कृष्ण बलराम थोड़े से एक्सपर्ट हो गए और वही जाने लगे बच्चों को लेकर और बड़ों को लेकर, बड़े ग्वाल बाल जाने लगे और वो बड़ी गाय जो है उनको दूर तक चलना पड़ता है, छोटी गायों को पास पास में चराते हैं। वो कैसे, सुबह निकलते हैं तो दोपहर में लंच में लौट के आते हैं, ये वत्सपाल लीला का गुणधर्म है। और उसका भी एक नियम है कि उधर एक नंद भवन में ना ऊपर एक जगह है, उसका नाम है यशोदा बैठक, वो सबसे ऊपर है, नंद भवन के सबसे छत पर है वो। और वो ऐसा है ना कि वहाँ पर जाके बैठेंगे ना तो पूरा नंदगांव आपको वो चारों तरफ दिखाई पड़ेगा, सारा दिखेगा, मोती कुंड दिखेगा, अक्रूर गमन, पावन सरोवर, जो भी नंदगांव में बुंदा कुंड है और उद्धव क्यारी है और नरसिंह बाबा का मंदिर है, ललिता कुंड है, आपको क्या देखना है, मोर कुंड है, कृष्ण कुंड है, नित्य गोपाल का मंदिर है, मोर बिहारी का मंदिर है, टेर कदम्ब है, सब कुछ दिखाई पड़ता है नंदगांव का। ऊपर से आगे वाला चीज जो है ना, खदीर वन है, कोकिला वन है, जावट है, गोवर्धन है, वो सब कुछ दिखाई पड़ता है, खदीर वन है, वो सब दिखाई पड़ता है। और ऊपर बैठकर जो जो दिखाई पड़ रहा है, जितना तक पड़ रहा है, वहीं तक उनको जाना है, क्योंकि माता का सीसीटीवी लगा हुआ है ऊपर, जब चाहे वो उसका दिल रहता नहीं ना, वो उसको एक समय भी एक मिनट भी छोड़ना नहीं चाहती, वो उसको वीरय सहन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं हर 15 मिनट में, हर आधा घंटे में ऊपर जाके देखते किधर है, किधर है, अच्छा उधर है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाकर जब देखती है तो दो चीज देखती है, वो कौन सी है दो चीज, हाँ एक कृष्णा और बलराम को देखते हैं किधर है ये लोग, और दूसरा सूर्य को देखते हैं, क्यों, अरे इतने ऊपर क्यों, अभी तक नीचे क्यों नहीं आ रहे हो क्योंकि जब नीचे आओगे तो घर में लौट के आएगा ना, तो वो व्याकुल है। यशोदा जी का ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में, क्या बताएं आपको, जैसे आंख है ना, इनकी आंख ऐसे, ये नीचे का जो पल क्या कहते हैं उसको, पलक है ना, पलक, ये कप की तरह है और उसमें हमेशा अश्रु भरे रहते थे, हमेशा सदैव 24 घंटे दुख के नहीं प्रेम के अश्रु, और वो बहते रहते हैं, वो जाकर पूरे ऐसे गालों पर चलते हुए ऊपर के वस्त्र को गीला करते रहते हैं, नंबर वन। और नंबर टू, अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बच्चे हो गए हैं, है ना, बहुत सारी माताएं बैठी यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कभी बच्चे लोगों को क्या 3 महीने में छोड़ के फिर काम पे चले जाते हैं नौकरी में, 3 महीने का, अभी 6 महीने का हो गया छुट्टी, लेकिन पहले 3 महीने का हुआ करता था, और 6 महीने के बाद भी लोगों को लगता है अरे 6 महीना अभी जाना पड़ेगा काम पे। तो जब भी 6 महीने में बच्चों को दूध पिलाने की जो समय आता था ना, हर 2 महीने में 2 घंटे में खिलाते हैं, बाद में 3 घंटे में होता है, लेकिन बचपन में जैसे जन्म होता है तो 2 घंटे में एक बार बच्चों को दूध पिलाते हैं, माता स्तनपान कराते हैं, तो ये फिर बंद हो जाता है काम पे जाने के बाद में, कुछ कुछ निकाल के रखते हैं फ्रिज में और फिर देते हैं। लेकिन जब भी वो समय आता है ना, आप लोगों को सबको याद होगा, जब भी वो समय आता है तो माता के स्तन से दूध बहता है, उनके ऊपर के वस्त्र गीले हो जाते हैं, यशोदा माई के ऊपर के वस्त्र 24 घंटे दूध के प्रवाह से गीले रहते थे। एक तो आंसु का प्रवाह है ऊपर से और नीचे से दूध का प्रवाह है, कॉन्स्टेंटली हर अपर क्लोथ्स आर ऑलवेज वेट, और ऐसे वो ऊपर नीचे कर रही है, उसको समय नहीं बिता जा रहा है, क्या अभी मक्खन भी मंथन करके हो गया, अभी ये भी करके हो गया, मिठाई बना के भी हो गया, अभी वो भी करके हो गया, काना किधर है, किधर है, किधर है, फिर ऊपर जाके देख रही है, फिर सूरज को देख रही है, फिर आखिर में सूरज ढल जाता है, फिर वो अभी 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 आएंगे तो फिर वो तुरंत थाली बनाना, फ्लाव फूल सजाना, फिर मिठाई रखना, उसमें पिस्तान की तैयारी करना, कपड़ा अत्तर ये सब, आते आते मुँह में मिठाई देना है, सब कुछ तैयारी करते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं पर्वत से। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो अकेले कृष्ण बलराम बछड़ों को लेकर जा रहे हैं, वो सब अपने आप को आके घर पे बता रहे हैं। तो बड़ी गाय और बैल अपने ग्वाल बालों को और गोपियों को बता रहे हैं, अरे हमको कब भेजेंगे उनके साथ, हमारे बच्चे इतना आनंद ले रहे हैं उनके साथ, हमको भी जाना है, हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। और फिर कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों में क्या चर्चा हो रही है, अरे तुम तो इतने बड़े हो गए फिर भी मैया बाबा को तुम पर विश्वास नहीं है, इसलिए अब तक बछड़े दिए हुए हैं, अगर विश्वास होता तो कब के आपको बड़ी गाय देते, फिर वो आप दूर दूर चलते। और छोटी गाय में बड़ी गाय में क्या अंतर है, मैं बताया ना आपको, छोटी गायों के लिए थोड़ा डिस्टेंस जाना है, लेकिन बड़े गायों को सुबह से शाम तक चरना होता है, तो सूर्यास्त के टाइम पर लौट के आती है वो। इसमें और एक मन में एक भाव है, बच्चों को ना ज्यादा सुपरविजन अच्छा लगता नहीं है, हाँ आप पहले वाले पे गैलरी में खड़े हो, बच्चा ग्राउंड में खेल रहा है और माँ देख रही है, उसको अच्छा लगता नहीं भाई, हर बार क्या है सुपरविजन में खेलना है, कभी तो हमको अपने आप खेलना, तो मम्मी आज मैं उस गार्डन में जाके खेलूंगा, नहीं 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 इधर ही खेलना है आपको, क्योंकि मम्मा को देखना है कि क्या हो रहा है इधर तो सभी बच्चों के मन में ये विचार क्यों आ रहा था, बार बार कृष्ण को चिढ़ा क्यों रहे थे, उनको पता था कि हमारी सभी मैयाएं जो अपनी छत से देख रही है, हम किधर है, क्या है, क्या कर रहे हैं, कितना दूर गए, कहाँ कूद रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को ऐसा वार्निंग देकर रखा है, कुछ बड़े ग्वाल वालों को बोलकर, तुम बड़े हो ना, देखो नदी किनारे चलना, इनको नदी के पास आने मत देना, क्योंकि तुम लोग लाइन लगा के ऐसे हाथ पकड़ के सांखले बनाओगे तो ये वहां पर नहीं जाएंगे, तुम नहीं जाओगे तो वहां से नदी में तुरंत भागते भागते गिर जाएंगे, इनको तो होश रहता ही नहीं है। लेकिन ये सब सुपरविजन में हो रहा है। तो दो बातें हैं, दे डोंट वांट सुपरविजन एंड दे वांट टू गो लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस बड़ा आनंद आता है, अपने आप जाके खोजना, एक्सप्लोर करना, कौन सा वन किधर है, किसमें क्या खिल रहा है, किसमें क्या आनंद है, जमुना जी कहाँ बह रही है, ये सब कुछ लोगों को होता है ना, उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी। तो ये भी अपना अभी एक एक करके ना चिमटा लगा रहे हैं कृष्ण बलराम को। तो कृष्ण बलराम को भी लग रहा है, हाँ अभी बड़े तो हो गए हम लोग, छोटे बछड़ों को चलाने में वो तो एक्सपर्ट हो गए, तो बड़ों को क्या करना है, वही सेम चीज है, क्या है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माता बाप पिता को क्या चिंता है कि इनकी हाइट जो है ना वो बड़े बैल और गाय से हाफ भी नहीं है, मतलब पैर की कितनी हाइट है उससे भी छोटे हैं ये, और वो बैल चलने लगेंगे और बैल पता है ना अभी कृष्ण बलराम के हाथ में तो बड़े आनंद में आ जाएंगे, भागने लगेंगे, कूदने लगेंगे, या फिर इनके पैर के नीचे आएंगे तो कैसे होगा, इसलिए वो भी उनको सोच नहीं रहे इसके बारे में। उनको बहुत बार रिक्वेस्ट आ रही है लेकिन वो उसको ज़्यादा सुन नहीं रहे। अभी कैसा होता है ना, आप आज बोलेंगे आप टाल देंगे, कल बोलेंगे फिर टाल देंगे, परसों बोलेंगे, लेकिन रोज रोज नहीं टाल सकते उनको, हर रोज जब वही बात करके टाल नहीं सकते, वही रीज़न देखे, अरे मम्मा आपने कल भी तो वही बताया था, आज भी तो वही बता रहे हो, कुछ नया तो बताओ ना कारण। ऐसे करते करते ना देखो रोज रोज क्या क्या संभाषण हो रहा है, गाय जो बछड़े जो बछिया बछड़े जो हैं वो अपनी मैया बाबा को ये सब बता रहे हैं, फिर मैया बाबा जो है वो गोपी गोपियों गोपालों को बता रहे हैं, और उधर मैदान में बच्चे कृष्ण को बलराम को छेड़ रहे हैं, खास करके कृष्ण को छेड़ रहे हैं। तो फिर कृष्ण ने भी घर में जाके बोलना शुरू किया, मैया सब मेरे बच्चे मेरे फ्रेंड मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि मैया बाबा तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, क्या यह बात सच है, क्या आप दोनों को मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं गायों को संभाल पाऊंगा। अरे नहीं बेटा, अब तो मैं बड़ा विश्वास रखती हूँ, लेकिन आप बहुत छोटे हो अभी, गाय बैल इतने बड़े बड़े होते हैं तो कहीं आपको जख्म हो जाएगा, इसलिए हमको चिंता रहती है। नहीं नहीं मैया हम कर सकते हैं। तो रोज कैसे चल रहे आनाकानी। अभी ना बालक बहुत होशियार है, वो कैसा ना रोज बोलते ना रोज इंजेक्शन देते कृष्ण को एवरी डे। तो एक दिन ना बहुत उनको चिढ़ाया, बहुत ज्यादा चिढ़ाया वो कृष्ण को ना, बहुत चिढ़ाते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा एक साइड में कहानी बताता हूँ, जस्ट विल कम बैक टू द स्टोरी। वही कृष्ण काले रंग के है ना, और वाल बाल सब लोग गोरे हैं, यशोदा गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, रोहिणी माता गोरी है, बलराम जी गोरे हैं, सब गोरे हैं, एक ही आदमी काला है सबके बीच में। तो ग्वाल बाल बोलते अरे तू कैसा रे काला, बाबा गोरे मैया गोरी तू कैसा काला। तो उसको भी प्रश्न पड़ रहा है, ऐसे कैसे हो गया, दाऊ जी भी गोरे मैं कैसा काला। तो घर में आके पूछता है मैया ऐसे कैसे, तो मैया को भी क्या बोलेगी मैया, तो क्या बच्चों को कैसे बताते हम लोग, तू ना रात के समय पे आया था इसलिए काला हो गया। बलराम जी तो दिन में आए थे ना, मध्यान्ह के समय आए थे, पूरे सूरज में आए थे तो वो गोरे हैं, तू बीच रात में आया था आंधी में तूफान में तो काला रह गया। ठीक है एक बात के लिए ठीक है, रोज रोज वही बताएंगे तो कैसा, और वो लोग रोज चिढ़ा रहे हैं उसको। फिर क्या बोलने लगे पता है, पहले प्रश्न पूछ रहे तू काला कैसे, फिर क्या बोलने लगे, लगता है तू नंद बाबा का बेटा नहीं है, यशोदा मैया का बेटा नहीं है। तभी ये नया थॉट है ना, अभी नया थॉट डाल दिया मन में, अरे हो सकता है, क्योंकि जिनके माँ बाप दोनों गोरे होते हैं बच्चे भी गोरे होते हैं, और हमारे दोनों माँ बाप गोरे हैं और मैं कैसे काला, मतलब चांस है कि मैं इनका बच्चा नहीं हूँ। तो घर में आके पूछा, मैया बाबा मैं आपका ही बेटा हूँ ना, तो हाँ बेटा तो हमारे बेटे हो, रात में आए थे ना इसलिए काले हो गए। फिर अगले दिन वही चिढ़ाना। तभी ग्वाल वाल कैसे ना बहुत बहुत शरारती होते हैं, बच्चे कैसे ना वो कुछ भी बोल देते हैं, भाई फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बोलने का उनका एक प्रूफ है बताता हूँ। सब लोग मिलके खीर खा रहे और कृष्ण बलराम को भी वो खीर उन्होंने दी अपने घर से लाके, तो कृष्ण भगवान को वो खीर में कुछ मीठा लगा ही नहीं, मतलब है ना कभी कभी लोगों को लगता है ना कि ज़्यादा मीठा लगता है, किसी को तो अच्छा लगता है, किसी को बहुत कम मीठा तो अच्छा लगता है, किसी को मीठा के बिना ही अच्छा लगता है। तो ये अच्छी मीठी खीर थी और कृष्ण ने खाई तो कृष्ण को लगा कि कुछ मीठा है ही नहीं इसके अंदर। तो एक जो ग्वाल वाल ने अपने घर से जो खीर लाई थी उसने क्या बोला होगा, मतलब कोई इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसे बोला कि जिसके नाना मूर्ख होते हैं उनको खीर की मिठास समझ में नहीं आती है। अभी क्या कनेक्शन है नाना का मूर्ख होना और इसको समझ में नहीं आना? बोले उनको स्वाद नहीं आता है मुंह में जिसके नाना मूर्ख होते हैं। नाना तक पहुंचा दिया। नाना जी किधर है पता है आपको? मेहरानो गांव में है। उनका नाम है सुमुख गोप, सुमुख, और नानी का नाम है पटुला देवी। ये मेहरानो गांव में रहते हैं, उधर कनेक्शन कर दिया। अभी आपको गुस्सा भी आ सकता है, आपको मजा भी आ सकता है, आप हंस भी सकते हैं, और सब लोग बोला हा 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 करके हंस रहे। कृष्ण बहुत पजल हो गए कि क्या बोल रहे हैं लोग, मेरा नाना कैसे मूर्ख है, मेरा नाना बहुत अच्छा आदमी। तो ऐसे बच्चे लोग कुछ भी बोल लेते हैं। अभी क्या बोलने लगे पता है? एक्चुअली ना हमने आपको बहुत दिन से नहीं बताया कि तुम गाले कैसे। इसका कारण यह है कि नंबर वन तो तुम नंद बाबा यशोदा के बेटे है ही नहीं। शॉकिंग न्यूज़। पहले ऐसे ही मे बी यू आर नॉट, और मे बी ऐसा मे बी हो, अभी तो फर्मली बोल रहे हैं कि आप उनके बेटे है ही नहीं। तो एक धक्का बैठा पड़ा हृदय पर धाड़ करके। फिर हम बताते हैं आपको आप कौन है। नंद बाबा और यशोदा माई एक बार बाजार हाट करने के लिए मार्केट गए थे, वहां से लौट रहे थे। तो लौट रहे थे रोड से, वो चल के गए थे उस दिन, अपनी गाड़ी से नहीं गए थे, मतलब बैलगाड़ी से नहीं गए थे, ऐसे ही गए थे। जब आ रहे थे तो उनको ना, जब ये थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम हो गया और रास्ते में आने लगे, उनको एक बच्चे की जोर से रोने की आवाज़ आई, बहुत जोर से। तो जब भी कोई माता पिता जिनको खुद के बच्चे हैं, वो जब बच्चे रोना सुनते देखते हैं वो कौन रो रहा है, किसी को परेशानी तो नहीं है। यहाँ वहाँ देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, फिर बच्चे को रोने की आवाज़ तो ज़ोरदार आ रही है। फिर ढूंढा उन्होंने, फिर भी नहीं मिला उनको। फिर वो आवाज़ की ओर गए ऐसे, तो वो आवाज़ बोलते हैं बच्चे लोग बोलते हैं कि पेड़ के अंदर जो होता है ना होल, उसके अंदर से वो आवाज़ आ रही है। आपने कितने लोगों ने पेड़ के अंदर होल देखे हैं बताओ? हमारे बचपन में हमने बहुत देखे हैं। इतने बड़े होल होते हैं ना कि आप उस पर बैठ सकते हैं, कभी कभी खड़े भी हो सकते हैं, कभी कभी रह भी सकते हैं उसके अंदर। साधु लोग रहते भी थे, अपना सामान वामान लग के अंदर सो जाते थे फर्स्ट क्लास, सुबह उठ के बाहर निकलते थे। जैसे तोता के साथ, तोता वो अंदर जाता है ना होल में, उनके लिए उतनी जगह पर्याप्त है। मनुष्य के लिए भी पेड़ के अंदर, बट वृक्ष के अंदर, आम के पेड़ के अंदर, कदम के अंदर जगह होती थी। वैसे वो पेड़ के अंदर बहुत बड़ी जगह थी और उसके अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। उधर गए देखा तो बच्चे बोल रहे हैं कि तुम उसके अंदर बैठ के रो रहे थे। तो यशोदा मैया को, नंद बाबा को दया आ गई कि बच्चा अकेला है, माता पिता तो कोई है नहीं, अकेला भूखा होगा, रो रहा है इधर उधर। तो करुणा से, दया से तुमको उठा के घर पे लेके आए, इसलिए तुम्हारा रंग काला है और उनका गोरा है, क्योंकि तुम उसके बच्चे है ही नहीं हो। तुम तो क्या कहते हैं उसको, अडॉप्टेड चाइल्ड हो, गोद में लिए हुए चाइल्ड हो। अब यू कैन इमेजिन, हम लोग सब हंस रहे हैं, देखो आप कितना हंस रहे हैं। कृष्ण को पता चलेगा ना आप हंस रहे हैं तो बोलेंगे आपको शर्म नहीं आती, आप हंसते हो। हाँ, मेरे पर क्या बीत रही पता है क्या आपको? मुझे बताया जा रहा है कि मैं इनका बेटा नहीं हूं और आप लोग हंस रहे हो और ग्वाल बाल भी हंस रहे, जोरदार हंस रहे। ये हमने आपको बताया नहीं, ये तो रियल रहस्य की बात यही है। अभी उस दिन ना कृष्ण को सहन नहीं होगा, मतलब ही कुड नॉट जस्ट टॉलरेट। तब तक तो इधर उधर बात हो रही है, भैया भी कुछ बोल रहे, रात का दिन का सब बोल रही है, लॉजिकल इलॉजिकल जो भी हो रहा है, लेकिन इस बार तो इट वॉज अ बिग सदमा फॉर कृष्ण, बहुत बड़ा सदमा था। वो दिन ना बीच में से निकल गए। वो ये जब बात हुई ना, सब लोग तो बीच में दिन में ही, अभी जाने का समय बहुत टाइम बाकी है, ऐसे ही निकल गए सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट घर पे आए और इतना रोए इतना रोए। अभी महाराज जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से बताया था कहानी को, वो कैसे ना पहले कृष्ण को, वो अभी ग्वाल बाल ना बहुत चैप्टर होते हैं, वो कैसे बोलते हैं कृष्ण को, हमें एक्चुअली पता है तुम कौन है, तो बता दो। तो बता दो बोलने के तो हंसने लगे जोर से, हाँ इतना जोर से हंस रहे थे, हंस रहे बोलते इट्स टू फनी वी कैन नॉट टेल यू। हाँ ये इतना जोकिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना जोकिंग है इतना। अरे बताओ तो सही, हंस रहे अरे घंटा घंटा पर हंस रहे, और इनको एंग्जाइटी बढ़ा रहे कि क्या एक्चुअली क्या स्टोरी है ये, इट्स टू फनी वी कैन टेल यू इट्स टू फनी। उसके बाद ये बताते हैं, अभी वो इतना जोर से हंस रहे हैं, इस पर इतनी बुरी बीती कि वो घर जाके इतना फूट फूट कर, सिसकियां दे देकर रो रहा है। तो मैया देख रहे, अरे सूरज तो ढला नहीं अब तक, तुम जल्दी कैसे आ गए, तो रोते ही जा रहा है। अभी देखो समझो, अभी मैं आपका बालक है समझो, और वो गार्डन में रो रहा है, तो एक एक रोता है, लेकिन आप आपको दिखेगा तो क्या होता है, और जोर से रोएगा, मैया, और क्या हो गया, तो पहले जोर से रो लेगा पहला, फिर सिसकियां भर लेगा, अरे बताओ तो सही, फिर कुछ देर रोते ही रहेगा आपको देख के, ज़्यादा रोते रहेगा पहले से, फिर बाद में ठंडा हो जाएगा, फिर बताएगा क्या हुआ, उसने मुझे मारा। तो वैसे घर पे गया ना तो रोते रोते गया, लेकिन जब मैया को देखा तो और जोर से रोने लगा, इतना गोद में जाके रो रहा है, आंसुओं की नदियां बहा रहा है। बोले कन्हैया क्या हो गया बताओ, गोविंद क्या हो गया गोपाल बताओ। तो बोले माता जी इट इज टू सैड, आई कांट टेल यू, बहुत ज्यादा दुखदाई है ये, मैं कह नहीं सकता। अरे फिर रो रहा है, फिर फूट फूट के रो रहा है। फिर बहुत देर के बाद वो कुछ बोलने लायक हो गया और बोला सब ग्वाल बाल मिलकर आज बहुत फर्मली ये बता रहे थे कि मैं तुम्हारा बालक नहीं हूं और मुझे तुमने मार्केट से उठा के लाया था। तो मैया पर क्या बीती होगी उस दिन, कैसा समझाए इसको, बहुत समझाया बहुत समझाया। फिर बच्चे लोग पता है ना, जब भी बहुत रोते हैं ना तो क्या करते हैं, सो जाते हैं, दे गेट सो टायर्ड। तो थोड़ा देर के बाद में फिर बहुत रोया, गोद में लिया, दुलारा, प्रेम किया उसको, थोड़ा सा अच्छा लगा उसको, भाई हो सकता है मैं इनका बेटा नहीं हूँ लेकिन मैया मुझे त्याग नहीं रही है ना, कम से कम अपना रही है, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। सब लोग इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और ये मुझे अभी भी उतना ही प्रेम कर रही है जो कल भी कर रही थी, सुबह भी कर रही थी, अभी भी वही कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रेम से स्वीकार कर रही है। थोड़ा शांत हो गया, अभी सो गया रात को। तो ऐसे है ग्वाल बाल, चिढ़ाने में, यू नो, कुगली करने में, काड़ी करने में बहुत एक्सपर्ट रहते, काम ही उनका ये है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद में, अभी ये जो मामला है गाय को देने का बहुत सीरियस हो गया अभी। तो एक दिन उन्होंने इस तरह से ग्वाल बालों ने बोला ना, वो ग्वाल बालों को कैसा ना, वो बहुत होशियार हैं, वो भगवान के प्योर डिवोटीज हैं, वो ऐसा काम करते हैं जिससे भगवान को आगे आनंद मिलेगा। जैसे ताल वन में ताल के फल जो है बहुत अच्छे पक रहे हैं और उसकी खुशबू जो है ना वो कोस कोस तक आ रही है पके हुए स्वादिष्ट फलों की, तो ग्वाल बालों को ये इच्छा है कि कृष्ण बलराम उसको खाए। लेकिन ग्वाल बाल ये भी अच्छी तरह जानते हैं, कृष्ण बलराम को अगर हम कहेंगे कि कृष्ण बलराम जी आप क्यों नहीं वो फल खाते, तो कृष्ण बलराम को खुद के आनंद की इच्छा नहीं होती है। कृष्ण बलराम हमेशा ग्वाल बालों को आनंद देने की सोचते रहते हैं, सी ये सोचते हैं उनको आनंद मिलना चाहिए, कृष्ण बलराम सोचते हैं इनको आनंद मिलना चाहिए। तो ग्वाल बालों को भी कृष्ण बलराम को वो खिलाना है फल, तो वो क्या बोलते हैं, कृष्ण बलराम जी, दाऊ जी, कन्हैया जी, हमको बड़ी भूख लग रही है और वो जो खुशबू आ रही है ना फलों की, वो हमको और ज़्यादा भूख बना रही है हमारी, कई दिन से खुशबू ले रहे हैं लेकिन सुना है कि उसके अंदर राक्षस बैठे हुए हैं, गधा बैठा हुआ है और कई गधे उधर कलरफुल गधे बैठे हुए हैं और वो किसी को अंदर आने देते नहीं है, चुने चुने ताल के फूल फल जो है वो कंस को मथुरा भेजते हैं और बाकी सब किसी को अंदर जाने देते नहीं, खुद ही खा लेते हैं। हमें बड़ी इच्छा हो रही है उसको खाने की, बड़ा हमारा पेट में चूहा दौड़ रहे हैं ताल के फल खाने के लिए। तो भाई कृष्ण बलराम क्या सोच रहे हैं कि मैं ग्वाल बालों को इच्छा हो रही तो मुझे ज़रूर खिलाना चाहिए उनको, उनको तो नहीं हो रही थी लेकिन उनको ग्वाल बालों को, तो तुरंत जाके बलराम जी ने धनुकासुर को मारा और फिर सबको मार्केट ओपन कर दिया। तो इनको पता है कि गायों को और कृष्ण बलराम को दोनों को साथ में होने से बड़ा आनंद मिलने वाला है, इसलिए रोज कुछ नया नया चीज निकाल के उसको उकसा रहे हैं। आज ऐसा फॉर्मली बोला, आज हमको यकीन हो गया है कि बाबा को तुम पर विश्वास ही नहीं है कि तुम गाय को चरा सकोगे, तुम कितना भी बड़ी क्या कहते हैं फुशार के, क्या बोलते हिंदी को मराठी में कहते हैं फुशार का मारने, फुशार का मंजे ऐसे बातें बनाना बड़ी जोर जोर से, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तुम कितने भी बातें बनाओगे ना, मैया बाबा को तुम पर रियली रियल में विश्वास नहीं है, इसलिए तुम भूल जाओ बड़ी गायों को लेके जाना वगैरह, तुम भूल जाओ अभी, ऐसा बोलेंगे तो कैसा लगेगा। तो कृष्ण बलराम सॉरी कृष्ण खासकर कृष्ण को टोक रहे हैं, बलदाऊ को सब पर श्रद्धा थी और बलदाऊ पर उनको भी श्रद्धा थी कि भाई मैया बाबा उनको बोलते थे कि देखो तुम बलदाऊ जी तुम बड़े हो ना, तुम तो बड़े हो, तुम्हारी कृष्ण की रक्षा करने का तुम्हारा फर्ज है और दो चार बड़े लोगों को साथ में लेके तलवार डंडा वंडा लेके कवर करना उसको अच्छी तरह से और देखना यहाँ वहाँ भागे नहीं, वो तुम्हारा जिम्मेदारी है, मेरी तरह तो मेरी तरह ही हो उसके लिए, मैं तो नहीं आ सकती, तुम साथ में हो। तो उनको सब लोगों को बलराम जी को चिढ़ाते नहीं थे, वो कृष्ण को चिढ़ाते थे। तो कृष्ण उस दिन भी ऐसे बीच में से निकल गए। वो दिन था जिस दिन बहुत दिनों के बाद में कृष्ण के 5 साल हो गए थे ऑलरेडी और 5 साल का जन्माष्टमी होके कार्तिक महीना आया था और कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष शुद्ध पक्ष यानी आश्विन हो गया 15 दिन का, फिर कृष्ण कार्तिक शुद्ध पक्ष की सप्तमी का दिन था वो। उस दिन ये गौचारण बछड़े चला के कहीं गए हुए तो ये दिन ये हुआ। और उस दिन घर पे क्या हो रहा है देखो, एक सीन यहाँ पर है कि उन्होंने ऐसा बहुत ही तीखी भाषा में उसको बताया कि तुम पर मैया बाबा को विश्वास ही नहीं है, ये सब जंगल में हो रहा है। और घर पे क्या हो रहा है, मैया बाबा रोज चर्चा करते हैं, आज भी आया था, कल भी आया था, परसों भी जिद कर रहा था, गैया भी आके बोल रही है, आप बच्चे भी आके बोल रहे हैं, कुछ करना चाहिए। तो वो दिन बैठ के उन्होंने बोला कि आज निर्णय ले ही लेते हैं, अभी अच्छा मुहूर्त देखते हैं। शांडिल्य मुनि को तुरंत बुलाया उन्होंने घर पे सप्तमी के दिन, वो बोला मुहूर्त निकालो। शांडिल्य मुनि रेसिडेंट साधु हैं, गोकुल में भी थे, नंदगांव में भी हैं। तो उन्होंने बोला अरे मुहूर्त तो कल का ही है, टुमारो, तो कल है तो शुभ से शीघ्रम तुरंत तैयारी करो। तो तुरंत राजा है ना नंदवाराज, सबको आदेश देते हैं, गोप गोपियों को सबको बोलो तैयारी करो। माँ चांडिल्य मुनि को पूछते क्या क्या चाहिए आपको, सब तैयार किया जाए। और घरों में धूमधाम तैयारी चल रही है। और इतने में बीच बिफोर टाइम कृष्ण जो है ना वो ऐसे सुनसान आते हैं घर पे और सीधे उल्टा मुंह करके बिस्तर में सो जाते। जब बच्चा नाराज होता ना तो क्या करता है, उल्टा मुंह करके सो जाता है तकिए के अंदर और दो ऊपर तकिया रखता है और सो जाता है। मैं सोता नहीं है, ऐसे दिखाता है कि मैं नाराज हूँ। दिस इज अ बॉडी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस टू यू आई एम अनहैप्पी। तो इधर उनको बताना है नंद बाबा को यशोदा मैया को, बेड़ा सुना तुमने, हमने कल तुमको हम बड़ी गायों का जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। तो वो तो सुनने को तैयार नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे। अरे अभी देखो रोज जब आता है ना तो उसका स्वागत कैसे होता है पता है आपको, दिन भर मैया सूरज को देख रही है, उनको देख रही है, सूरज को देख रही है, उनको देख रही है। जब एक्चुअली सूरज नीचे आता है तो सब तैयारी करते हैं उसको स्वागत करने की, और ऊपर रह नहीं सकते वो उसके बाद, क्योंकि वो नीचे आएगा जमीन के सर पर और ऊपर चढ़ के और टाइम जाएगा, हमको और देर से उसको मिलना होगा, इसलिए हम नीचे जाते हैं। तो सब थाली वाली गोपियों को सब काम देकर अपने हाथ में देकर खुद नंद बाबा यशोदा जो नीचे चले जाते हैं। वो नीचे एक जगह है उसका नाम है नंद बैठक। आप में से कितने लोग गए हो नंद बैठक पे, बहुत सुंदर जगह है उधर। वो यशोदा कुंड है उसके बाद में नंद बैठक है। बाबा ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बड़ी बड़ी मूंछ वाले, हरे रंग का अंगरखा पहना है, हाँ ऐसे बैठे हुए हैं पलटी मार के। उनके एक गोद में कृष्ण भगवान, एक गोद में बलदाव जी, और कैसे इधर लेफ्ट साइड में छोटा भैया है कृष्ण, तो उनका लेफ्ट पैर जो है बाहर है ना, मैं ऐसे बैठूंगा तो लेफ्ट पैर बाहर आ गया ना मेरा, और यहाँ गोद में बैठूंगा तो उसके राइट पैर बाहर आएगा। तो एक गोरा पैर एक काला पैर जो है ना वैसा रखा हुआ है, यू कैन इमेजिन। एक पैर तो अंदर फोल्ड करके रखा हुआ है बाबा के गोद के अंदर, और एक पैर खुला छोड़ा है इसने, अपना लेफ्ट पैर जो फोल्ड किया है बलराम जी ने, और राइट पैर जो है ना वैसा, दोनों के सुंदर सुंदर पैर जो है ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे बाहर है लटक रहे हैं। और वैसे भाग के आते हैं वो, बच्चे लोग कभी चल देगा, अभी देखो आपका बच्चा बैठा है क्या वो, नहीं वो उसका एक्टिविटी चल रहा है कॉन्स्टेंट, हम लोग बैठ सकते हैं, बच्चे लोग बैठ नहीं सकते हैं। आप उनको बोलो यहाँ से वहाँ जाओ तो वो चलेंगे नहीं, तो डांस करते करते ही जाएंगे, है ना, ऐसे 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 जाएंगे, ऐसे 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 करते जाएंगे, ऐसे 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 हिल रहे, दे विल नेवर बी स्टडी। तो आप क्या उम्मीद करते हो कृष्ण बलराम बच्चों को चला कर ऐसे ऐसे चल के आ रहे क्या, वो ऐसे डांसिंग करते आ रहे, मुरली बजाते डांस करते आ रहे। और कभी आपने एक्सपेक्ट उम्मीद क्या होगा ना, दूर से बच्चा भाग के आके गोद में छलांग मारते आपके, तो आपको उसका स्पीड भी खींचना पड़ता है कि भाई मुझे, मैं गिर ना जाऊँ, उसको पकड़ते हैं हम लोग ऐसे। बच्चे लोग क्या क्या करते हैं, धाड़ करके आपके बॉडी में कूदते हैं, मैया करके ऐसे गले मिलते आके, ऐसे स्पीड में आके ऐसे ये भाग के आके बाबा के गोद में चढ़ जाते हैं। दोनों जगह बैठ के दोनों एक साथ बता रहे हैं आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। और वो दोनों अकेले बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे ग्वाल बाल भी अपना अपना सुना रहे हैं, उनका दृष्टि से क्या देखा उन्होंने आज। समझो अभी आज भगवान ने धनुकासुर को मारा फॉर एग्जाम्पल, तो कितने ग्वाल बाल है, कोई इधर है पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई पीछे, कोई आगे, कोई साइड में, कोई पेड़ के ऊपर बैठ के देख रहा है, तो सब लोगों को वो अलग अलग दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। एरियल एंगल डिफरेंट, राइट एंगल डिफरेंट, लेफ्ट एंगल डिफरेंट, कैसा सबका अपना अपना फाइंडिंग, अपना अपना ऑब्जर्वेशन। तो एक प्रसंग हुआ है आज, समझो एक प्रसंग नहीं, बहुत सारे प्रसंग होते दिन में, लेकिन जो कुछ बता रहे हैं एक प्रसंग के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ बात कर रहे हैं गोद में, तो ऐसे देख रहे, ऐसे देख रहे, ऐसे देख रहे, दोनों सबको देख रहे हैं। और ग्वाल बाल भी एक साथ बात कर रहे हैं, तो उनको भी देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं, सब एक साथ बात कर रहे हैं, सबको होती है एंग्जाइटी। अरे बेटा सुनो, एक एक आदमी बताओ ना ठीक से, नहीं फिर भी हाँ बोलेंगे, फिर सब लोग बोलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे बोला बोलने के लिए, तो मैं ही बोलना चाहिए, सब लोग अपना अपना बोलना शुरू करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सीन का आइडिया दे रहा हूँ कि क्या सीन है नंद बैठक में, क्या हो रहा है। एकदम शांति होती है कृष्ण बलराम के आने के पहले। कृष्ण बलराम एक बार ग्वाल बालों के साथ, बच्चों के साथ आए, तो फिर इतना शोर रहता है कि कौन क्या बोल रहा है, और सब लोगों को इच्छा है कि मैं जो बोलूं वो बाबा सुने, बाबा सुनो मेरी बात, बाबा मेरी बात सुनो, सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, सबकी बात उनको सुननी पड़ती है, और उनको भी समाधान होना चाहिए कि मेरी बात सुनी आपने, आपने हाँ हाँ करेगा तो समझता है कि बाबा नहीं सुन रहे, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, उनको पता चलता है। फिर थोड़ी देर के बाद में लोगों को लगता है कि हाँ बाबा ने सुनी, फिर शांत हो जाते हैं। फिर शांत होने के बाद में दोनों को उठाकर ऊपर चले जाते हैं। फिर उसके पहले आते ही थोड़ा मिठाई देते हैं, थोड़ा पानी पिलाते हैं, थोड़ा सब गोद में लेते हैं, फिर चुम्मा लेते हैं, फिर सर सूंघते हैं, सब कुछ मैया बाबा सब कुछ करते हैं, फिर उनको ऊपर लेके जाते हैं। ये रोज का है, ये रोज का सेरेमनी है, एवरी सिंगल डे सब गोपियाँ ऐसे साल लेके खड़ी है, उसके अंदर मिठाई, उसके अंदर सब पेय, उसके अंदर सब कुछ है, क्या चाहिए आपको आने के बाद, तुरंत ड्राई फ्रूट्स एवरीथिंग इज देयर। और फिर उनको उठा लेके जाते हैं ऊपर, भी कुछ गोपियाँ सब बच्ची तैयार रहती हैं, उधर एक अच्छा पात्र रखा है, शंख रखा है, पंचामृत रेडी रखा है, सुगंधी जल, ऊन जल, गर्म जल, नए कपड़े, टॉवेल, अलंकार सब ऐसा रेडी रखा है श्रृंगार के लिए। थक के आया ना बालक दूर से, तो उनका स्नान किया जाता है, गीत गाए जाते हैं, उसके बाद में उसको पहुँच कर उसका रात का श्रृंगार किया जाता है, हल्का लेकिन बढ़िया नया ड्रेस पहनाया जाता है। उसके बाद में माखन मिश्री है, उसके बाद में मिठाई है, उसके बाद में स्तन पान है, उसके बाद में उनको उठाकर बिस्तर पे लेके जाते हैं दोनों को, फिर दोनों मैया लोरी गाती है, सो जा रे लाल सो जा, तेरी मैया सुलाती है, आप मत सो जाना। उसका राग ही ऐसा है कि भाई ऐसा लगता है कि सो जाए आराम से, सो जा रे लाल सो जा, तेरी मैया सुलाती है, चंदन का बना पलना, रेशम की बनी डोरी, चंदन का बना पलना, रेशम की बनी डोरी, माँ तुझको सुलाती है, तू सो जा मेरे प्यारे, माँ तुझको सुलाती है, तू सो जा मेरे प्यारे। और थोड़ा छोटा देख दे रहे हैं पलने को, जब होगी सुबह की बेला मैं तुझको जगाऊंगी, माखन और मिश्री का तो ही भोग लगाऊंगी, माखन और मिश्री का तुझे भोग लगाऊंगी, सो जा रे लाल सो जा, तेरी मैया सुलाती है, तेरी मैया सुलाती है, सो गया। ये रोज का है, बहुत सागर संगीत, बहुत प्रेम से, बहुत ही इत्मीनान से। उस दिन जब ये आया, कुछ नहीं, नो स्वागत, नो स्टोरी, नो नंद बैठक, सीधे ऊपर खुद कर चढ़ के गया, सीधा बिस्तर पे गया, सो गया, बीच में स्नान नहीं, वस्त्र बदलना नहीं, स्तन पान नहीं, मिठाई नहीं, कुछ नहीं, सीधा सो गया। और यहाँ मैया जो है वही थोड़ी अभी आएगा, अभी तो टाइम है, तो मैया को बताना है सब कुछ, क्या क्या हुआ दिन में, आज मीटिंग हुआ और आज स्टैंप लग गया उसके ऊपर कि तुमको बड़ी गाय का भार देना है, देखो तैयारियाँ हो रही है, लेकिन उसको कहाँ दिखाई पड़ रहा है। जब आप नाराज होते हो ना, तो आपको कुछ अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है, कभी सोचा है आपने इसके बारे में? When you are upset, nothing looks sweet to you. वो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तैयारी हो रही है सब कुछ धूमधाम से, लेकिन गया सिर सो गया। तो मैया कोशिश कर रही है उसको यहाँ से जाके, सुनो बेटा सुनो, तो वो किधर सुन रहा है, फिर यहाँ से फिर वहाँ से, कुछ नहीं। तो हिलने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, क्या करे, खाना नहीं खाया, दूध नहीं पिया, कुछ नहीं किया, सो गया। तो ठीक है सुने दो, थक गया होगा बेचारा, क्या मालूम, बहुत उधम करते ये रास्ते में, कल सुबह बोलेंगे उसको। अच्छा अभी सुबह का सेरेमनी क्या है, रोज का सबसे पहले कृष्ण उठते हैं एकदम अंधेरे के समय, और बताइए सबके उठकर पहले क्या करते हैं बताओ। यस मम्मी को ढूंढता है, नहीं सॉरी माता जी, और क्या करते हैं बताओ, सबसे पहले उठ के, सबसे पहले पहले उठते ही क्या करता है, उठ के मुरली बजाता है, क्यों, वो सब ग्वाल बालों को अलाम है वो कि कान्हा उठ गए हमको भी उठना चाहिए, क्यों मैया ने उठाती उनको, मुरली बजते सब लोग खाट करके उठ जाते, तो मैया वो भाग जाते हैं, भाग के आते हैं भाई बेटा उठ गया, फिर उसको यहाँ पे यशोदा जा जाती है बलराम जी के लिए, रोहिणी आ जाती है, वहाँ पर सब गोपियाँ आ जाती हैं, फिर वो सब क्या करते हैं उसको ले जाते हैं उठा के। अच्छा सब जब रात का सेटिंग था ना, वैसे मॉर्निंग का सेटिंग भी अलग होता है, गर्म पानी उधर, रात रात को अलग इत्र, सुबह अलग इत्र होता है, कपड़े श्रृंगार, रात का तो नाइट ड्रेस है ना वो शयन श्रृंगार है, सुबह का तो इलेबोरेट है ना, अभी जाना है, तो रोज सुबह ये सब कुछ काम होता है, डेली उनको उठाना, पहले तो मैया लोरी सुनाती है सुबह उठने वाली, फिर उसके बाद में नहलाना धुलाना, मुखमार्जन है, तो कभी कभी मुखमार्जन करने के बाद में उनको, पहले छोटे थे तो अपने घर में स्नान कराते थे टप वो बर्तन के अंदर, थोड़े बड़े होने के बाद में एक यशोदा कुंड है वहाँ पर नंद बैठक के पास में, तो वहाँ सुलाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं और स्नान कराते हैं उनको। कुछ देर बाद में वो क्या करते हैं, मुंह तो धो लेते हैं और कपड़ा निकालने का समय आता है तो भाग जाते हैं, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या हो गया, आजकल सब बच्चे भाग जाते हैं, जैसे ही कपड़ा निकाल के स्नान कराने का समय आता है सब भाग जाते हैं, तो सब लोग मैया बोल रहे क्यों भाग रहे हैं सब लोग, फिर मैया बोलते हैं यशोदा मैया बोलते कि वो कपड़े ना बहुत टाइट हो रहे हैं आजकल, बटन लगते ही नहीं है कृष्ण बलराम के, अरे बड़े हो रहे वो इसलिए बदन कपड़े ढीले नहीं हो रहे टाइट हो रहे हैं, हाँ बड़े हो रहे इसलिए शर्मा रहे हैं हमारे सामने कपड़ा उतार कर स्नान करने के लिए, और कुछ देर के बाद अपना ही स्नान करके आ जाते हैं, बोलो भैया स्नान हो गया, तो पता चलता नहीं कहाँ जाते हैं। तो आगे बाबा ने कृष्ण कुंड बना के रखा है, बाबा से अलग बात करके बोले हमको मैया के साथ स्नान नहीं करना है, हमको अलग स्नान करना है, तो बाबा ने अलग कुंड बना दिया कृष्ण कुंड, तो दोनों भैया जाके वहाँ पर स्नान करके आते हैं, और फिर कपड़ा मैया पहनाती है, श्रृंगार करती है, और फिर श्रृंगार करके फिर मिठाई खाना, फिर गीत गाना, ब्राह्मण लोग श्लोक बोल रहे हैं जाना है, फिर बच्चों को लेके जाते हैं, ये रोज का सीन है। उस दिन तो आपको बताया ना बड़ी गायों का जिम्मेदारी देना, तो पूरी बड़ी जिम्मेदारी, पूरी पूरा इंतजाम है पूरा उस दिन, और ऋषि मुनि सब आ गए, कुंड सजा के रखा है, इतनी विधि करनी है, वो रत्न किष्टिक है ना लकुटी, दोनों के लिए दो बना के रखे शाइनिंग विद ज्वेल्स गाय चराने के लिए, और सब व्यवस्था हो रही है, और ये कहा उल्टा मुंह करके सोया है, रात का सोया हुआ वैसे ही सो रहा है वो अभी भी वैसा ही है, तो वो आके लोरी गा रही है तो ये किधर उठता है, वो उठने को तैयार नहीं है, और उस दिन अलार्म नहीं बजा उनका मुरली वाला, फिर भी ग्वाल बाल सब उठ गए, क्यों बताओ क्यों, अलार्म तो नहीं बजा तो कैसे उठे वो। देखो ऐसा है, समझो आप या मैं, आपको कार्तिक में समझो 4 बजे उठना है, तो आपने 1 महीने से प्रैक्टिस करके रखा है रोज 4 बजे उठना है, और कभी आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया ना और अलार्म नहीं बजा, फिर भी आपको 4 बजे अपने आप जागाती है, क्योंकि आपको 1 महीने की आदत लग गई है, आपने प्रैक्टिस करके रखा है। मेरा भी ऐसा है, कभी अलार्म बजा नहीं बजा उसके पहले ही मैं 10 मिनट पहले जग जाता हूँ और अलार्म का वेट करते रहता हूँ, फिर लगे अरे बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अरे टाइम तो हो गया है, इसका मतलब शरीर है ना अपना, शरीर है ना महाशय, वो कैसा होता है ना, जैसा उसको ट्रेन करोगे ना वैसा वो ट्रेन होता है। आप एक बार ही खाने का निश्चय करो, अभी मेरे को एक ही बार खाना है, मुझे खाना ही नहीं है, तो आपको एक ही बार भूख लगेगी, दिन भर भूख लगेगी नहीं, आपने तय किया कि हमको एकादशी करना है, अभी एकादशी में खाली फल खाना है, तो आपको भूख ही लगेगी नहीं एकादशी को, और थोड़ा सा फल खाएंगे थोड़ा सा कुछ खाएंगे, फिश नहीं खा सकते जो आप बुरा आदत बना के रखी है। शरीर ऐसा है कि आंध्र प्रदेश का साधु जो है वो अगर निश्चय किया तो बद्रीनाथ के अलकनंदा में 3 बार पानी में खड़ा रहकर गायत्री कर सकता है 5 मिनट की, इसमें 10 सेकंड खड़ा रहना भी मुश्किल है। 10 सेकंड खड़े रहना, डुबकी लगाना भी, आप पत्थर बन सकते हो आइस का। लेकिन आंध्र प्रदेश का सन्यासी भी निश्चय पूर्वक बद्रीनाथ जाकर दिन में 3 बार गले तक डूबकर अलकनंदा में गायत्री कर सकता है, क्योंकि ये शरीर ही भगवान ने ऐसा दिया है। मनुष्य शरीर, प्राणियों के शरीर में सुविधा नहीं है, वो तो रूटीन चलता है उनका, चेंज नहीं कर सकते उसको। मनुष्य के शरीर को आप चाहे जैसा मोड़ सकते हो और इससे भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, जो चाहे आपके मन में आप उसको मोड़ सकते हो। 4 बार खाने का भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस। मेरी मैया जो है ना, वो क्या बताऊँ, ऐसा गांव का शरीर है, अभी 93 की एज है, अभी भी दिन में 6 बार खाती है वो, थोड़ा थोड़ा खाती है, पहले ज़्यादा खाती थी, थोड़ा 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 उसका आदत है, 6 बार खास खाती है और खा सकती है और अच्छी चंगा है। 8-8 चम्मच शुगर खाएगा ना तभी शुगर नॉर्मल रहता है उसका, 100 रहता है, और हमारा बढ़ जाता है और उनका नहीं बढ़ता है। शरीर ही ऐसा है, पूरा कुएं का पानी निकाल के वो रगड़ा है ना, वो चक्की अपने हाथ से पीसते थे, हमारे गांव में कैसा होता है ना वो, ऐसा रगड़ा होता है पूरा, सब करके एकदम मस्त शरीर है, कुछ बीमारी नहीं है, बोलो 94 खाली याददाश्त को बैठे सब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में वो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये सब बात कहाँ से निकली? अलार्म से। तो रोज का अलार्म का टाइम है ना फिक्स, तो मुरली नहीं बजा तो क्या हुआ, सब ग्वाल बाल तो उठ गए, और ग्वाल बालों को सबको रात को ही पता चल गया था कि कृष्ण भगवान को अभी हम सबको कल से बड़ी गाय बैलों को लेकर जाना है, तो वो एकदम खुशी खुशी थे, पहले उनको एंग्जाइटी थी बहुत, तो उठ गए वो और पूरा सज धज के अपने अपने घर की बड़ी बड़ी गायों को लेकर वहां पर आ गए सब लोग, बड़े बाबा लोग भी आ गए कि इनको किनको उनको गाय को देना है, सबको लेकर आ गए। और बछड़े क्या बोलेंगे, हमारा टर्न अभी खत्म हो गया, हम नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़ी है, उन्होंने तो उनको उकसाया है बड़ी मैयाओं को, तो वो भी जा रहे हैं, तो रोज के बछड़े भी आ रहे हैं और नई गाय बैल भी साथ में आ रहे हैं। 108 झुंड है उनके, अलग अलग प्रकार के, कोई तिलक नहीं, कोई बड़ा तिलक है उसका एक झुंड है, कोई काला, कोई गोरी, कोई काले के ऊपर ब्लैक, ब्लैक के ऊपर वाइट धब्बे, वाइट के ऊपर ब्लैक धब्बे, भूरा रंग की कोई है, भूरे रंग पे वाइट, भूरे रंग के ब्लैक धब्बे, ऐसे अलग अलग टाइप के गोपियाँ गायें हैं सब, कोई धूरी कामरी, कोई ऐश कलर की है, कोई पीले कलर की है, हर प्रकार की गाय है कृष्ण के पास, और सभी एकदम पूरा ग्रुप वाइज 108 झुंड खड़े हैं, सब रेडी अपना पोजीशन है, वेट कर रहे हैं कृष्ण कभी आएंगे ले जाएंगे हमको, आतुर है सब लोग, और हमारे कन्हैया अभी सो रहे हैं। तो फिर चर्चा हो रही है, क्या करे इसका, रात को भी नहीं उठा, अभी भी नहीं उठ रहा है, मुहूर्त निकल जाएगा अपना, तो जाके कान में जोर से बोल देना कि तुम्हें आज बड़े गाय बैलों की जिम्मेदारी देने वाले हैं, सब लोग आ गए। तो मैया ने जाके वैसे बोला तो एकदम जंप उड़ गया, जंप हो गया बिस्तर से एकदम लाइक ए स्प्रिंग बोर्ड, और वो दिन में एक्सप्रेस तैयारी हो गई पूरी एकदम फटाफट। रुत के साथ बच्चे कैसे होते हैं, मैं थोड़ा अभी नहीं बाद में करेंगे, होता है ना ऐसे धीरे धीरे, वो जो एकदम एक्सप्रेस तैयार हो गई, कृष्ण एकदम एक्सप्रेस तैयार होकर सज धज के आगे बाहर। और कहते हैं उस दिन कृष्ण भगवान ने, अष्टमी का दिन था ना वो, ये सब गोपाष्टमी की कहानी बता रहा हूँ उनको, तो उस दिन कृष्ण भगवान ने यज्ञ किया शांडिल्य महाराज के नेतृत्व में, और फिर उसके बाद में कहते हैं उन्हें सारे गायों की पूजा की। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह के समय पे इतना छोटे समय पे इतनी लाखों गायों की पूजा अकेले ने कैसे की होगी, मतलब इंडिविजुअली की सब गायों की पूजा, हो सकता है अनेक रूप धारण करके की होगी या चमत्कार किया होगा, भगवान क्या नहीं कर सकते ये सब कुछ करके फिर मैया आई, और मैया ने बोला ये लो 2 जोड़ी जूता, एक तुम्हारे लिए एक दाऊ जी के लिए, और ये लो 2 छतरी, एक तुम्हारे लिए एक दाऊ जी के लिए, क्योंकि रोज तुम दोपहर को लौट के आते हो, इतना धूप नहीं लगती आपको, अभी आप पूरी दोपहर बाहर रहोगे, पूरा सूरज ढलते तक बाहर रहोगे तो धूप भी लगेगी, छतरी लेके चला करो। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ना हम जूता पहनेंगे ना हम छतरी पहनेंगे। बोले क्यों? बोले यथा गावस तथा गोविंदः, मतलब जैसे गायों को रखना है वैसे ग्वाल बाल को रहना चाहिए, जैसे गाय है वैसे, गाय के पैर में जूता है क्या? नहीं है ना, तो हम भी नहीं पहनेंगे। अगर आपके पास 36 लाख जूता है, मतलब 9 लाख गाय के 4 पैर है ना, तो हम पहनेंगे। बोले मेरे पास इतना जूता तो है नहीं, आपको ये ले लो पहनना पड़ेगा, और छतरी भी है क्या आपके पास 9 लाख? तो छतरी भी नहीं है इतनी, आपके लिए है पहनो। बोलते हम नहीं पहनेंगे, अगर हमारे गाय के पैर में जूता नहीं है और हमारे गाय को छतरी नहीं है तो हम भी नहीं लेंगे। अब ये सब गाय लोग सुन रहे हैं, अरे ये नंगे पैर चलेगा अभी, मतलब रास्ते में कंकड़ होंगे, कांटे होंगे, पत्थर होंगे, सख्त चीजें होंगी, रोड रोड कहीं सख्त होगा, होता है ना ऊपर नीचे के ऊपर खपड़ होता है। अभी कोई हाईवे पे गाय नहीं चलाते हैं, वो लोग जंगल में चलाते हैं, पत्थर भी पथरीली जगह पर सब कुछ होता है। कभी कभार पेड़ के पत्ते भी बहुत सख्त होते हैं, और इनके पैर तो मक्खन से भी अधिक मुलायम है। अरे वो जो ग्वाल बाल के साथ में कृष्ण भगवान जाते थे ना बछड़े को चराने के लिए, तो दिन भर गोपियाँ ऐसे हाय हाय करते थे, पता नहीं इनका मक्खन जैसे पैर कहाँ पड़ते होंगे, क्या होता है, वो रोती थी वो सोच सोच करके कहाँ पैर पड़ते होंगे, कितना दर्द होता होगा, जब हम अपना अंगूठा भी लगाते हैं पैर को तो लाल हो जाते थे वो। तो गाय भी सुन रहे हैं, अरे तो दूर दूर जाना पड़ेगा हमको लेकर, हम रोज दूर दूर चरने जाते हैं। तो फिर तुरंत वो ये अपना मीटिंग करते हैं अपने यहाँ ग्वाल बाल और गाय, और गाय लोग कहते हैं अभी हम चारों दिशा में जाएंगे, और जितनी रास्ता में चारों दिशा में जहां जहां कंकड़ पत्थर कांटे हैं उसका पाउडर बना देंगे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि आज का डेस्टिनेशन किधर है, अनाउंसमेंट नहीं था कि आज कहाँ जाना है। शास्त्र में लिखा है दो जगह, दो टाइप लिखा है कि पहली बार बड़ी गायों को लेकर भगवान गोवर्धन गए, फर्स्ट गौचारण, ये हमारे गौड़ी शास्त्र में लिखा है, और नॉन गौड़ी शास्त्र में लिखा है कि पहले दिन वो संकेत वन गए। तो उसकी एक लंबी कहानी है कि फर्स्ट डे संकेत वन गए तो उधर क्या हुआ, बताऊंगा आपको, याद आए तो बाद में बताऊंगा। एनीवेज तो उनको पता नहीं था कि आज का लोकेशन क्या है, और पूछने का समय नहीं था, बहुत विधि चल रहे थे। तो हो सकता है कि कहीं भी जाएं तो कहीं भी मुलायम मट्टी होनी चाहिए। तो सारे ब्रज की जितनी भूमि थी वो सबको कूट कूट कर, कूट कूट कर अपने पैरों के खूर से कूट कूट कर सब ऐसा मुलायम टैल्कम पाउडर बना दिया पूरा, कहीं भी चलो। और ऊपर से पता है ना गायों का प्रेम कैसा है, जब कूट रही है ना पैरों से, किसके लिए कूट रही है? कृष्ण के लिए कूट रही है। क्यों कूट रही है? क्यों? कृष्ण पर उनका प्रेम है, बड़ी गायों का कृष्ण के ऊपर वात्सल्य प्रेम है, जैसे मैया का प्रेम है यशोदा मैया का। तो जैसे मैया को कृष्ण की याद में, कृष्ण के विचार में स्तन से दूध निकलता है हमेशा, ऊपर का वस्त्र हमेशा गीला रहता है, मैंने बताया ना आपको, वैसे ये जब कर रहे थे ना ऐसे, उनके भी स्तन से दूध टपक रहा है कृष्ण की याद में, और इतने बड़े थन है ना उनके कि जहां से चालू हो रहे हैं जमीन को छू रहे हैं, इतने बड़े, इतने बड़े थन उसके जो है ना, नीचे के जो अडर्स निपल्स वो जमीन को छू रहे हैं। तो जब ये जमीन को पाउडर कर रहे हैं तब उसमें दूध भी गिर रहा है उसके अंदर। तो जब लौट के आए ना, पूरे ब्रज भूमि के अंदर गीली भूमि, पाउडर जैसी रज ऊपर से गीली, मतलब ठंडा ठंडा भी और मुलायम मुलायम भी, जैसे मक्खन जैसा बना दिया पूरा। और ब्रज रज का मतलब वो है फाइन पाउडर, कूल इन नेचर, जिसके ऊपर सिंचन किया हुआ है गाय के प्रेम के दूध का, और वो सारा ऐसा माहौल बनाकर दूध से सिंची हुई मुलायम रज बनाकर वो सब लाके वापस खड़े हो गए 108 हाँ झुंड में। और तब फिर इनका विधि समाप्त हो गया, कृष्ण बलराम बड़े खुश हैं। और अभी उस दिन क्या हुआ पता है, उस दिन उनको मुरली दिया गया, फिर लास्ट में उनको हाथ में ना वो रत्न जड़ित लकुटी दी गई, लास्ट विधि मंत्र पूर्वक सौंप दी गई कि आज से आप गोपाल, आज से आप, आज के पहले आप वत्सपाल थे, आज से आप गोपाल कृष्ण जाने जाओगे। और सब गोपियों को खबर थी उस समय, तो गोपियों को बड़ी उत्सुकता थी, अरे आज कृष्ण बलराम दूर जाएंगे गाय को लेकर, अरे हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। हरे कृष्णा, थोड़ा रोक दे क्या इसको कि समाप्त हो रहा है, बैटरी इज गेटिंग लाइफ अवे, ठीक है ऐसे देख के बोलता हूँ फिर अच्छा रहेगा। तो गोपियों ने क्या किया, राधा रानी ना वो सुबल गोपाल जैसा ही उसका चेहरा है, सुबल है ना सुबल, वैसा एक गोप है जिसका चेहरा राधा रानी जैसा है। तो राधा रानी ने फेटा पहन लिया, अपने बालों को लड़कों के तरह फेटा में छुपा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, ग्वाल बालों की तरह डंडा लिया, गाय भी लिया, और उसके अंदर वो घुस गए सब लोग ग्वाल बाल बनकर। और जब ये विधि समाप्त हो रही थी, तब ये तैयार हो रहे थे, तो वो अपना ना ऊपर का वस्त्र जो है ना, वो ऊपर नीचे का वस्त्र ऊपर करके भाग रहे हैं। यही कारण है कि गोपाष्टमी के दिन राधा रानी के और गोपियों के चरणों का दर्शन कराते हैं, क्योंकि वो अपना वस्त्र ऊपर उठाकर, अभी देखो आपको जल्दी में भागना है तो आप लोग क्या करेंगे, वो उठा के भागेंगे ना, कोई घाघरा पहना है, कोई लहंगा पहना है, कोई कुछ पहना है, तो साड़ी पहना है, तो ऊपर पकड़ के भागेंगे ना आप, बच्चा अगर गिर रहा है तो उसी प्रकार से वो भागे और बच्चों के झुंड में मिक्स हो गए। अभी 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 मंत्र बोल के बोला, अभी जाओ आप, यू कैन स्टार्ट योर गौचारण। तो वो चलने लगे, गाय भी चलने लगी, अरे मैया भी चल रही है, रोहिणी भी चल रही है, सब प्रभावती भी चल रहे हैं, सबको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है। तो कुछ देर तो ठीक है ना, अभी समझो अभी विदाई हो रही है, उसके बाद कुछ देर चलेंगे, बाद में तो आप जाओ घर पे अपने, हम जा रहे हैं अपने अपने विदाई करके। इस तरह से कुछ देर तक रोहिणी भी आ रही है, यशोदा भी आ रही है, बड़े गोपियाँ सब आ रही है, कृष्ण भगवान बार बार मुड़ के देखते हैं तो वापस आ रहे हैं, अभी भी चल रही है, फिर आगे चलते आनंद लेते हैं, इधर उधर पीछे, अरे वापस चल रही है। फिर बोलते मैया अभी जाओ भी ना आप, क्योंकि उनको अपना स्पेस चाहिए था, स्पेस, यू नो व्हाट इज स्पेस, अप टिल नाउ इन विजिलेंस, सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर गौचारण करते थे, अभी उनको मौका मिल रहा है आज से ऑफिशियल दूर जाने का, तो इधर भी साथ में चल रही है, क्योंकि मैया को चिंता है कि अभी ये तो मेरे रेंज के आगे चला जाएगा, पता नहीं क्या करेगा, किधर गिरेगा, क्या मस्ती करेगा, तो उसको वात्सल्य की चिंता है, और इनको चिंता है अपनी स्पेस की, भाई नहीं चाहिए हमको। तो फिर मैया को जरा जोर से बोलते हैं, मैया अभी जाओ ना आप, अभी क्यों इधर हमारे साथ में आ रही है। तो मैया उधर ही खड़े हो जाती है, दोनों सब मैयाएँ वहीं खड़ी हो जाती जहाँ पर आ गई है, आगे चलती नहीं है, और ये सब आगे चल के निकल जाते हैं। कैसे, यहाँ से भी जा रहे गैया और ग्वालबाल, यहाँ से भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, और वो उधर ही खड़े हैं, और भी सब निकल जाते हैं, और निकल जाते 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 क्षितिज के परे चले जाते हैं, बियॉन्ड द होराइजन, अभी केवल धूल दिखाई पड़ रही है, वो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर वो बड़े ही भारी पैर से लौट के आते। तो ये सब मैं आपको एक नोट की कहानी बता रहा हूं, चौथे नोट की कहानी बता रहा हूं, चौथा स्वर क्यों बजा रहे हैं अभी, तो भगवान अभी चौथा स्वर बजा रहे हैं और सभी गौओं को अपना इशारा दे रहे हैं। हाँ, दिन भर उस दिन बहुत अच्छे तरह से गौचारण किया उन्होंने, और गौचारण करने के बाद में जब निकलने का समय आया तो नेचुरली फर्स्ट दिन दूर चले गए ना, अपना रोज का इतना हैबिट है, आज बहुत ज़्यादा दूर चले गए, बहुत ज़्यादा मस्ती किया, आनंद किया, अरे विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, जय जय, आज हमको बड़ी गायों का जिम्मेदारी फाइनल मिला, आप लोग कह रहे थे कि मैया को विश्वास नहीं, बाबा को विश्वास, देखो दिया मुझे आज, तो उसकी भी खुशी है, विजय का भाव है, सब लोग घूम रहे हैं, सब लोग बच्चे भी खुश है कि हमारा जो आइडिया था इनको उकसाने का वो सफल हो गया, इनको गाय की बैल की जिम्मेदारी मिली, सब लोग आनंद मनाया, बहुत धूमधाम से मजा किया उस दिन। लेकिन हुआ क्या, दूर जाने से थक गए कृष्ण बलराम, कृष्ण का चेहरा भी थोड़ा मुरझा गया। तो ग्वाल बाल कितने होशियार है पता है, उनको मालूम है कि अगर ये मुरझाया हुआ थका हुआ चेहरा कृष्ण का अगर यशोदा माई देखती है तो वो कल का प्लान कैंसिल कर देगी, बोला बेटा मेरा थका हुआ है, कल सीएल कैजुअल लीव, परसों देखेंगे। तो उनको मंजूर नहीं था, उनको कृष्ण को रोज आना चाहिए, इसलिए उन्होंने ना कृष्ण को रस्ते में कविता 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 सुना सुना कर मज़ेदार हास परियास करके हंसते हंसते रखा। आपको पता है हंसने से क्या होता है, डू यू नो, हंसने से चेहरे का रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, क्योंकि पेट दबता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, पेट पकड़ पकड़ के हंसे, मतलब क्या, पेट को दबाना पड़ता है ना, तो वहाँ पर रक्त धमनियों पर प्रेशर आता है, फिर ऊपर का रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और चेहरा भी लाल होता है। अभी बहुत हंसेंगे ना आप तो आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आपको पता नहीं अभी क्या एक्सप्लेन करूं आपको। तो वैसे उन्होंने जानबूझ के कृष्ण को हंसाया हंसाया तो चेहरा उसका प्रफुल्लित हो गया कि भाई पहुंचने के बाद मैया को लड़का खुश दिखना चाहिए। तो करते 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 आए तो एक जगह है वहां पर टेर कदम नंदगांव में, वहां पर ये अभी कनेक्शन हुआ ये समझाने के लिए चौथा नोट में क्या हुआ। तो चौथा नोट पे क्या हुआ, भगवान सबको लेकर एक कदम के पेड़ के पास आए, तो बहुत सारी गाय आ गई थी लेकिन कुछ गाय अभी भी ऐसा ही अपना घास खाने में बिजी थी। तो ये उस पेड़ के ऊपर बैठ गए, एकदम ऊपर की डाली में बैठ गए, और डाली में बैठने के बाद में उन्होंने चौथी नोट बजाई मुरली की, जिसमें हर गाय का नाम हर गाय को सुनाई पड़ रहा है। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कृष्ण अपने साथ आने वाले करोड़ों ग्वाल बालों का हर ग्वाल बाल का नाम जानते थे, करोड़ों, और हर बछड़ा और हर गाय का नाम भी जानते थे, हर बैल का नाम भी जानते थे, हर बछिया और हर बछड़े का नाम जानते थे। और बाय द वे आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण के साथ केवल गाय और बैल नहीं जा रहे हैं, भैंसे भी जा रहे हैं, भैंसा भी जा रहा है, बकरी भी जा रही है, खरगोश भी जा रहा है, क्योंकि कौन छोड़ेगा चांस, वो वृंदावन में आए क्यों है, वो कृष्ण बलराम का साथ देने के लिए। तो नाम तो गौचारण का है लेकिन सब लोगों का चारण हो रहा है, एवरीबडी इज एंजॉइंग विद कृष्णा। सबका नाम कृष्ण को पता है और सबका नाम लेकर वो धुन बजा रहे हैं और सब गायों को अपना नाम सुनाई पड़ रहा है। तो वो सब गाय भाग के आती है उस पेड़ के नीचे और क्या करती है, आंख ऊपर, पलक झपक नहीं रही है, कान ऊपर एकदम स्ट्रिक्टली स्ट्रेट, पूंछ भी ऊपर, और इसे खड़े हैं बस देख रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। और फिर इतना करने पर भी कुछ गाय बहुत नटखट है, बहुत उसको अटेंशन चाहिए, वो सुनकर भी अनसुना कर रही है, अपना घास ही खा रही है। तो भगवान सब लोगों को गाय को कहते हैं, आप लोग यही रुको, मैं अभी आता हूँ। पेड़ से उतरते हैं और जाकर उन हर गाय को थपथपाकर नाम बोलकर उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर सबको इकट्ठा करने के बाद फिर मुरली बजाते हैं और फिर मुरली बजाते बजाते वो टेर कदम से नंदगांव की ओर जाते हैं। और इस तरह से पहले दिन का गौचारण समाप्त हो जाता है। हरि बोल। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान की जो गाय के चौथी स्वर का ये चमत्कार है कि सभी गायों क्या, और वर्णन बहुत सुखदेव जी करते हैं कि वो बछड़ों के साथ चल रहे सब लोग है ना, और मैया गाय सब भाग भाग के आ रही है और ऊपर देख के ऐसे आ करके देख रही है। बछड़े लोग मैया का दूध पी रहे हैं गाय का, लेकिन वो भी एकदम सुन्न हो जाते हैं। जब वो सुनते हैं तो कैसे है, उनके मुंह के अंदर अभी सक किया हुआ दूध है, समझ में आपको आया, उनके मुंह के अंदर अभी अभी चूसा हुआ दूध है और अभी उनका जबड़ा नीचे गिर रहा है, जो चूसना ही भूल गए। तो फिर क्या हो रहा है, उनके मुंह से टप 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 खून पृथ्वी पर गिर रहा है, खून नहीं दूध पृथ्वी पर गिर रहा है, और पृथ्वी माता बछड़े का महाप्रसाद पी रही है। ऐसे बहुत सारी गाय खड़ी है, बहुत सारे बछड़े आ करके खड़े हैं और गाय के मुंह में भी घास है, वो भी ऐसा आ करके खड़े हैं और सुन रहे हैं, एक एक घास का पत्ता भी पृथ्वी पर गिर रहा है। ऐसा सुंदर सीन है भगवान का, मुरली का प्रभाव कैसे गायों को पूरा भाव विभोर कर देता है। हाँ, फिर वो अपने घर पे चले जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।